نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير گناہوں کے برے اثرات. اس میں سے ہم نے اسباب گناہ میں تقریباً 20 کے قریب اسباب گناہ دیکھے تھے. صرف ایک لسٹ کے طور پہ گو تھرو کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم بک کے اندر سے پیج 28 کے مڈ سے پڑھیں گے تو وہاں ہمیں مزید چیزیں بھی دکھیں گی. سب سے پہلی چیز خواہش نفس کی پیروی, اور ہر لفظ سنتے وقت آپ چیک لسٹ بنا لیجئے کہ میرے کتنے گناہ صرف نفس کی خواہشات پوری کرنے میں ہوتے ہیں. دوسرا سبب ہے لا علمی, انا پرستی, شیطان کے بہکاوے, ارادے کی کمزوری, حب دنیا, غفلت, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے ہمارے کلچر میں سب سے زیادہ گناہ یہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو خوش کرنا, ہوتے وہ پھر بھی نہیں ہیں جتنی مرضی کوشش کر لیں. پھر اگلا سبب ہے بے حسی, آخرت کی جزا سزا کا یقین نہ ہونا. پھر حب ذات, اس میں تکبر اور بڑائی, اور میں کیا پہنوں کہ میرے جیسا کوئی ہو نہ, ایک دفعہ دیکھے تو بجلی گرا دوں, اور فلاں فلاں, یعنی خاص طور پہ جس میں نمائش آتی ہے انسان کی. پھر اسی طرح بری صحبت, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی, اللہ تعالیٰ سے کمزور تعلق. پھر ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں سب کر رہے ہیں. پھر ایک اور سبب تھا تاویلیں کرنا. ایکچولی آج کا دور, آج کا ماحول, اس ملک, اس معاشرے میں رہنا. پھر اسی طرح لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے. پھر اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ گناہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ گناہ کی شدت سے آگاہ نہیں ہوتا. اب اگر آپ بک کے اوپر نظر ڈالیں تو اس میں کچھ چیزیں آپ کو مزید ایڈ ہوں گی. آئیے پڑھتے ہیں. گناہوں کے نتائج, نیکی کی توفیق میں کمی. ذرا سے اس پہ رکیے. مجھے تو ہر گناہ قرآن سننا یا قرآن پڑھنا اور پڑھانا اسی سے متعلق لگتا ہے. میں آپ کو پڑھانے کے لیے آتی ہوں, اللہ مجھے توفیق دیتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ویک میں کوئی ایسا بڑا گناہ کر دوں اور اللہ مجھے بچا کے رکھے کہ اس ویک مجھے یہاں آنے کی توفیق نہ ملے. یاد رکھیے, جب بھی کبھی کسی نیکی میں کمی آنے لگے تو پھر اپنا وہ گناہ ڈھونڈا کرے, جیسے صحابہ کرام ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی گناہ ضرور ہو گیا جو ہمیں نیکیوں کی طرف نہیں آنے دیتا. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانا چاہوں گی. کس کے گھر شوق سے جاتے ہیں, کس سے ملنے کا ارمان ہوتا ہے, جس سے پیار, جس کا کوئی کام کیا ہو, دل چاہتا ہے ملے اور جلدی سے چپکے سے وہ ہمیں کچھ کہے. کسی کو کچھ کھانے کو بھیجا ہو, کیا دل چاہتا ہے, جائیں ملیں, پھر وہ کہے آپ نے کتنی مزے کی چیز کھلائی. یعنی تعلقات کا بہتر ہونا ہمیں اس کی طرف آنے کا موقع دیتا ہے. اب نیکی کی توفیق کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. جب اللہ سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا, جب ہم نے یہاں سے اچھی اچھی چیزیں بھیجی ہوتی ہیں نا, تو پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے نمازوں میں اللہ سے ملاقات کریں اور قرآن میں اللہ کی بات کو سنیں اور نمازوں میں اپنے دل کی سنائیں. تو جب تعلقات بگڑے ہوں, چلیے کدھر جانے کو دل نہیں کرتا, جس نے آپ کو کوئی کام کہا اور آپ نے نہ کیا ہو, جس سے شرمندہ ہوں, جس کی کچھ چغلی کی ہو اور کھل گئی بات. اب آپ دیکھیے کہ جب کسی کا دنیا میں ذرا سا 19-20 کا حق مارا ہوتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں سامنا نہ ہی ہو, تب جائیں جب وہ چلے جائیں, یا شادی میں تب جائیں جہاں کسی کو میرا آنا دکھے نا. بس نیکی کی توفیق میں کمی یہی ہے. چونکہ اللہ سے تعلق بگڑا, نیکیاں چھٹ گئیں. کیا آپ آج سے لے کر اگلے ویک تک اپنے آپ کو اس نتیجے کی روشنی میں پرکھیں گے؟ اور اگر آپ نہیں پرکھیں گے تو ہمیں اس موضوع سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, بس آپ کی فہرست میں ایک کتاب اور شامل ہو جائے گی جو آپ نے پڑھی. لیکن یاد رکھیے, آج امت مسلمہ میں اتنی بے حسی کیوں ہے؟ نیکیوں کو کوائنز کی صورت میں کیپ اٹ کیوں کہتے ہیں, رکھیں اپنے پاس, چینج آئی وی ڈونٹ نیڈ اٹ. گھر کے بیکار کپڑوں کی بھی شاید کوئی وقت ہو, لیکن نیکی کے موقع کی وقت ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا 100 کرون بھی کہیں غلط جگہ پہ لگ جائے تو ہمیں اس 100 کرون کا افسوس ہو, لیکن نیکی کے موقع کا چھیننا اتنا کیجول, کیئر لیس ایٹیچیوڈ, ہو گیا جی ہوگا, دیکھ لیں گے, اٹس اوکے. اور خاص طور پہ جب میں کسی کو پوچھوں آپ کیوں نہیں آئے, اتنا پر اطمینان قسم کا لہجہ ہوتا ہے اپنے نہ آنے کی وجہ پہ, تو مجھے تو اندر ہی سمجھ آ جاتا ہے گلٹی کوئی نہیں. केयरलेस थे, टिश्यू पेपर की तरह पकड़ी क्लास, गिर गया तो गिर गया, याद भी नहीं कितने थे हाथ में, दो चार गिर गए, अच्छा मुझे तो पता भी नहीं मेरे हाथ में चार टिश्यू पेपर थे। तो याद रखिए, आज हम मुसलमान अगर अपने आप को इस निगाह से नहीं देखेंगे तो याद रखिए हमारी अगली नस्लें तो फिर इस विजन से महरूम हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट चीज़ देखिए, राय की खराबी, ये भी बड़ी अहम बात है। एक एक लफ्ज़ पे आपको दस दस बातें सोचने की ज़रूरत है। राय की खराबी कैसे होती है गुनाहों से? पहले तो आप इसको सीरत से समझिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हमेशा अबू बकर क्यों थे, कि हत्ता के कहने वालों ने यहाँ तक कह दिया कि ज़िंदगी में भी साथ थे तो अब कब्र में भी साथ है, और मेराज पे साथ जा नहीं सकते थे तो अल्लाह ने वहाँ फरिश्ते की शक्ल बना दी। ये बात सच है कि नहीं? लेकिन ये बात मशहूर है, आखिर अबू बकर आपके साथ क्यों थे? क्योंकि अबू बकर नेकियां करने वाला शख्स था, और अल्लाह के नबी अपने इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोगों को रखते थे जो कुरान में आगे, जो फहम में आगे, जो तकवा में आगे। इसीलिए हुक्म है आज भी इमाम के पीछे बिल्कुल उसके पिछली सफ में जो शख्स खड़ा हो वो सबसे ज्यादा साहिब इल्म हो, कुरान अच्छा पढ़े। क्यों? खुदा न खास्ता किसी वजह से इमाम अगर उस नमाज को कंटिन्यू ना करा सके, वुजू टूट जाए, जाना पड़े, कुछ भी, तो वो पीछे वाला आगे आएगा। तो याद रखिए, अपने इर्द गिर्द किन लोगों को रखती हूँ, किन की सोहबतों का शिकार हूँ। क्योंकि राय की खराबी है, आपकी दोस्त की राय अच्छी है ना तो वो आपको पलटा कर नेकी पे वापस ले आएगी, और बुरी राय वाली दोस्त कहेगी इट्स ओके, तुम पता नहीं किधर चली गई थी, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती थी। इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाते, इस मुल्क में रह के कहाँ तुम अपने आप को पर्दे में छुपा सकती हो, बहुत अच्छा फैसला तुम्हारा। तो याद रखिए, किसी से भी मशवरा करते वक्त सोचे, कहीं ये मुझे सीधा जाता जाता मोड़ तो नहीं देगा? कई दफ़ा ऐसा नहीं हुआ आप सही जा रहे होते हैं, साथ बैठा एकदम कहते नहीं पीछे मुड़ना था, आप कहते हैं ये रोज़ आता जाता इसको मेरे से ज़्यादा पता होगा, और आप उसके कहने पर गाड़ी मुड़वाते हैं, और जब पीछे मुड़ के थोड़ा सा भटके फिर समझ आ गया कि ओहो नहीं वही रास्ता ठीक था। तो याद रखिए, अपनी राय की खराबी से भी डरें, अपने साथ वालों की भी। फिर गुनाहों का तीसरा नतीजा, हक बात का जाहिर ना होना। यकीन करें आपको ये सिर्फ लफ्ज़ लग रहे हैं, मुझे ये जुमलों से बढ़कर एक एक लफ्ज़ के अंदर एक एक मज़मून दिख रहा है। हक बात जाहिर क्यों नहीं होती आज लोगों पर? किसको नहीं पता हक क्या है? अब कम अज़ कम हम सबको तो पता है हक क्या है, लेकिन फिर भी हम हक और बातिल के बीच में मशकूक क्यों होते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वरज़ुक़ना इत्तिबाहु, दुआ सिखाई कि अल्लाह हमें हक को हक समझने वाला फिर उसकी इत्तबा करने वाला बना, और अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, और बातिल को बातिल समझकर उससे बचने वाला बना। आज कितने लोग हैं हक को शक की नज़र से देखते हैं और बातिल उनकी नज़रों में खूबसूरत है, तो गुनाहों की वजह से। फिर आगे देखिए, दिल का फसाद, ये क्या होता है? बस इस पे तो वही कहते हैं कि मन अपना पुराना पापी, बरसों में नमाजी बन न सका। गुनाहों का एक नतीजा दिल में फसाद आता है। फसाद क्या होता है? फसदा, किसी चीज़ का बिगड़ जाना, मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाना। खाना फ्रेश था, अभी पकाया, बहुत अच्छा था, बाहर रख दिया 24 घंटे, हो सकता है कि वो बाहर रह गया हो, कुछ भी हुआ वो बिगड़ जाएगा, वो ख़राब होगा। नतीजा उसका क्या निकलेगा कि आपके खाने के अंदर जरासीम पैदा हो जाएंगे। नुकसान क्या होगा उसका कि आपका खाना बिगड़ गया। अब दिल क्या था? अल्लाह की याद, दिल के अंदर होनी चाहिए थी अल्लाह की याद, आपके दिल में किसी और की यादें आ गई, दिल बिगड़ गया। सच बताइए, आज कितनों के दिल फसाद ज़्यादा हैं। पहले तुम कहते थे जवानी में दिल ख़राब होते हैं, और जवानी दीवानी, और जवानी मस्तानी, जवानी बिगाड़ती है। आज क्या हालात हैं, बूढ़ों के भी दिल ख़राब हैं क्योंकि नज़रें ख़राब हैं, कान ख़राब हैं। आज बीवियां कहती हैं सारी ज़िंदगी वो गलत तकाजे ना किए जो बुढ़ापे में करने लग गए, नज़रें ख़राब हैं, देखते ख़राब हैं, सुनते ख़राब हैं, और गलत देखना, सुनना, पढ़ना ये गुनाह है, और इस गुनाह का नतीजा दिल में फसाद आता है, उल्टी सीधी उमंगें शुरू होती हैं। फिर एक और नतीजा देखिए, ज़िक्र इलाही का छूटना। याद रखिए, ज़िक्र तो इंसान के लिए ऐसे है जैसे ढाल है, गिरते को बचाने का ज़रिया ज़िक्र इलाही है। कितना वक्त होता है हमारे पास फारिग, ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, खाना पकाते हुए, कपड़े इस्त्री करते हुए, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को वॉच कर रहे हैं बैठ के, क्या उस वक्त ज़िक्र इलाही नहीं हो सकता? और ये जो एक एक दो दो घंटे की फोन कॉल्स और सारा दिन चिट चैट, इधर की बात उधर, उधर की इधर, जिक्र के काबिल कहाँ छोड़ती हैं हमें। आज देखिए कितना जिक्र कम हो गया। पहली माएँ खाना पकाती थी तो सात बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, और कई माएँ आज भी ये दावे करती हैं कि हमारे बच्चों को हमने दूध पिलाने के दौरान जिक्र जारी रखा, बहुत कम हुआ कि हम बेवजू दूध पिलाएं। जितनी मखलूक के साथ कलाम और बातें बढ़ती जाएंगी ना, याद रखिए अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं होगा। आज वही वक्त फ़ोनों पे बातें करते हुए, आज खाने में लज्जत कहाँ से आए, आज बरकत कहाँ से आए। आज तो उसके दौरान भी सामने रखा देखा होता है कई चीज़ें, कई लोगों को मैंने देखा है अपने काम करने की जगह के ऊपर स्क्रीन लगाई होती है, कहते हैं किचन में ज़्यादा वक्त गुजरता है, तो यहाँ साथ साथ देखते रहते हैं मनपसंद चीज़ें। तो फिर याद रखिए कि ये तो फिर गुनाहों का शौर हो तो बात समझ आती है, अगला नतीजा गुनाहों का। हर के साथ अपनी बुक में 1 2 3 लिखे ताकि एंड पे आप देखें कि गुनाहों के कितने नतीजे हैं। अगला नतीजा क्या है? तदीए औकात, वक्त का ज़ाया करना। सच बताइए आज टाइम वेस्ट होता है? मैं सोचती हूँ हफ्ते में एक दिन की क्लास 2 3 4 5 घंटे भी हो जाए, और उसके बरक्स कितने घंटे कितने दिन कहाँ जाता है हमारा वक्त, और वक्त दिया किसने? और याद रखिए शैतान इतना बदबخت है, वो वक्त जो नमाज का है ना उसी में मशगूल करेगा आपको, जो वक्त आपके कुरान पढ़ने का है ना उसी में कोई ज़रूरी काम याद आएगा, सारा दिन ढीले ढाले, इस वक्त खूब एक्टिव, ये करना वो करना, आज क्लास में इसलिए नहीं आना, कल इसलिए नहीं आना, आज की जोहर चलेगी। और ख़ास तौर पे ये जब दिन चेंज होते हैं ना, इसमें 2 3 दिन ज़रूर अपनी नमाजों को नज़र में रखें। अगर तो आपको अजान होते ही पढ़ने की आदत है ना, फ़र्क भी नहीं महसूस होगा। लेकिन याद रखिए कि वक्त ज़ाया होता है गुनाहों की वजह से। आज अगर हम सिर्फ अपने टाइम वेस्टर्स की लिस्ट बना लें तो वही बात है कि अपने हाथों से अपने बच्चों को वो चीज़ें ला के देते हैं कि उनके पास हमारे लिए भी वक्त नहीं बचता। अगर आवाज़ दे के देखें बच्चे को, कितने बच्चे हैं जो उठकर आए, जी मामा जी अब्बू, वहीं बैठेंगे, जी इधर आओ कहेंगे, आवाज़ आ रही है बोलें। एक सिस्टर की बात, कल हम बातें कर रहे थे तो वो अपनी बच्ची को समझा रही थी कि किस तरीके से बच्चे पहले दौर में जब माँ बाप बुलाते थे तो हमें वहाँ से पास आके कहना पड़ता था जी अबू, और अगर वहाँ बैठे बैठे कह दिए जी तो कहते थे एस जी नू वट्टा मारना है, उधर बैठ के बोल रहे हो इधर आओ, और कभी कहना सर तो हिला दिया तो मुंह से तो बोलो। यानी कैसे हमारी रवायत बदल गई, किन मशगूलों में मसरूफ़ है आज हमारी औलादें, कहाँ हैं इस वक्त भी हमारे बच्चे, किन को ज़रूरत है सूरह यूसुफ की, क्या हमने उनसे कमाइयाँ खानी है इस वक्त, क्या वो हमारे लिए घर साफ सुथरे करके मज़े के खाने बना के बैठे होंगे, किधर जा रहा है वक्त। वल्लाह ही उम्र ज़ाया कर दी हमने, अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाया कर दी, और अभी भी एहसास ज़ियाँ जाता रहा। फिर आगे देखिए, मखलूक से नफ़रत होती है, ये भी एक बात है। गुनाह क्या है? खालिक की नाफरमानी। और मखलूक कौन है? खालिक का शाहकार। जब खालिक से नाराज़ हुए तो मखलूक भी नहीं अच्छी लगेगी। ये ऐसे ही है जो भाई बहन अच्छा ना लगे ना, या झगड़ा हो, उसके बच्चे भी नहीं अच्छे लगते। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। फिर आप देखिए गुनाहों का अगला नतीजा कितना खौफनाक है, कि रब से वहशत होने लगती है। नाउज़ुबिल्लाह, कहाँ बंदा जिएगा रब से वहशत करके। अल्लाह के नाम से वहशत होती है कि रब है, रब की बात। कई लोग लिटरली कहते हैं कि अजान की आवाज़ सुन के वहशत होती है। एक सिस्टर थी उनके घर में, और यहाँ इतना मैंने कम देखा है, लेकिन अमेरिका में हर घर में तकरीबन अजान क्लॉक है। अब चूंकि फ़ोन्स पे भी आ गए तो ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन वहाँ इतनी डिफरेंट किस्म के थे, और आज से 10 15 साल पहले बहुत आम था, हमारे अपने घरों में होता था। तो वो इतनी ऊंची आवाज़ होती है कि अगर नीचे चलता है तो ऊपर के पोर्शन में भी आवाज़ आती है। तो घर की बहू बेटी जो थी, जो कुरान से जुड़ी थी, उसने ला के लगा दी। बड़ों में से घर के उनको वहशत होती थी, कहते थे इसको बंद कर दो, कम कर दो। वजह क्या? पढ़नी नहीं तो फिर बाद में गिल्ट तो होगा ना, यानी मस्त है इंसान, तो रब से वहशत हो गई तो रब ने आपको क्या देना है। फिर आगे देखिए अगला नतीजा गुनाहों का, दुआ की अदम कबूलियत। इसीलिए आज दूसरों को कहते हैं हमारे लिए दुआएं करते हैं, मौलवी साहब जरा आए दुआ करा जाए, बच्चों को बुलाएंगे, सवारा सवारा पढ़ाएंगे, हम उनको दही बल्ले और पिज़्ज़ा खिलाएंगे, फिर वो हमारे लिए दुआ कर जाएंगे। आपका अपना ताल्लुक किधर है अल्लाह के साथ? और यकीन करें दुआ की अदम कबूलियत ऐसी बड़ी कबाहत है कि फिर बंदे का रब से मांगने को दिल भी नहीं करता कि मेरी तो कबूली नहीं होनी, पीछे वजह गुनाह है। आप अपने इंटेलेक्ट से और जो माशाल्लाह नॉलेज इर्द गिर्द से आप ले रहे हैं उसको सामने रख कर इस एक एक कोड वर्ड को खोलते जाइए बाद में। मुझे ऐसे लगता है ये सिर्फ बार कोड है, एक एक को खोलें तो इसके अंदर से आपको मुझे अपनी ज़िंदगी के कई मसाइल की वजूहात समझ आएंगी। फिर आप देखिए गुनाहों का अगला नतीजा कसावत कल्बी, दिल सख्त हो जाता। दिल की सख्ती क्या होती है? रोना नहीं आता। रोते तो बहुत हैं सैड मूवीज़ देखकर, सैड सॉन्ग सुनकर रोते हैं, लेकिन कुरान पढ़कर कितने रोते हैं? किसी यतीम को देखकर दिल में क्या होता है? फिर इसी तरह रिस्क और उम्र में बेबरकती है। 5,000 करोन अगर आपके मियाँ की किसी दौर में तनख्वाह थी ना, आज से 20-25 साल पहले, उसमें शायद आज के 20-25 से ज़्यादा बरकत थी। एक मर्द कमाता था हर घर में, ये फितरत का भी असूल है, लेकिन आप देख लीजिए कि अब घर का हर बंदा कमाता है, तो फिर तो बैंक में हर महीने 1,00,000 करोन तो कम से कम डिपॉजिट होना। कहते हैं बिल पहले आ जाते हैं पे बाद में आती है। क्या हुआ? रिस्क और उम्र में बरकत नहीं रही। उम्रों में इस तरह भी बेबरकतियाँ हो रही हैं कि जो जवानियाँ लगनी थी किसी और रास्ते में, या तो वो दुनिया में लग गई या अल्लाह एकदम ले लेता। और हदीस है कि जब गुनाहों की कसरत होगी ना, तो उसके बाद अचानक मौतें बहुत कसरत से होंगी। और अल्लाह सबको बचा कर रखे, सबके बच्चों की, उनके शौहरों की, उनके भाइयों की, माँ बाप की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला हमें तौबा किए बगैर, मोहलत दिए बगैर ना लेकर जाए। फिर आगे देखिए, बुरे और फसादी दोस्तों की सोहबत मुयस्सर होना, बैड कंपनी है ना ये वजह। आप जिन लोगों में उठे बैठेंगे आप वैसे हो जाएंगे। अपने आप को आजमाना चाहते हैं ना कि मैं कितनी नेक हूँ, तो किसी ऐसे में डाल लें जिसको नेकी का शौक नहीं। 2 दिन में आपको पता लग जाएगा ये ऊपर एक हल्का सा वनीर ही था नेकियों का, वो भी गया। अगर दिल में नेकी का शौक नहीं, कभी होता है दिल चाहता है करूं पर सुस्ती, नफ्स, आगे क्या कुछ आ गया, तो क्या करें? ढूंढिए अच्छी सोहबत। यकीन करें व तवासो बिल हक की व तवासो बिल सब्र, यही है। और इस बिरु व सा बिरु व रा भी, तो आपको क्या पता कि ये एक दफ़ा हफ्ते में मिलना आपको कितने गुनाहों से बचाए हुए। एक लाज होती है, एक शर्म होती है बंदे को कि मैंने अगले हफ्ते जाकर फिर कुरान से मुलाकात करनी है। तो लिहाजा हर मुमकिन बुरी सोहबत से बचिए। फिर इस तरह लंबे गम और हुजन, दिल में गम आता है गुनाह से, ये तो पक्की बात है। गिल्ट कह लें, ज़मीर की चुभन कह लें, या हदीस के मुताबिक मा हाक बिही फ़ी नफ्सिक या फ़ी सदरक के भी लफ्ज़ आते हैं कि वो जो तेरे दिल में खटक पैदा करे वो गुनाह। अब आप देखिए ना, एक दफ़ा को टिक करें खैर है, फिर अब ये बार बार करना क्या है, कानों पे बोझ पड़ेगा। तो हर गुनाह जब कर रहा होता है ना बंदा, उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है, बाद में ख़त्म होते कहते हैं फ़ायदा क्या, ज़ाया किया टाइम, 3 घंटे ज़ाया कर दी, क्या ज़रूरत थी जाने की, देखो अब क्या होगा। यानी हर गुनाह के बाद बंदे के दिल में मलाल है। ये शराब क्यों पीते हैं लोग, आपने कभी सोचा? ड्रग्स में क्यों जाते हैं? ये गुनाहों की इस तकलीफ़ और हुजन को मिटाने की एक नामुमकिन कोशिश होती है। फिर इसी तरह देखिए, मईशत में तंगी, ये तो सूरह तौहा में लिखा है, वमन आरादा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका। ज़िंदगी तंग, मईशत में तंगी क्या होती है कि गुजरान ही नहीं हो रही। घरों में तंगी, दिलों में तंगी, रिश्तों में कबाहत, माल है तो कमाई नहीं, शोहर से झगड़ा, कभी ससुराली झगड़े, कभी बेटी का गम आ गया सामने, अब बेटे का गम आ रहा है। यानी ऐसे लगता है कि मईशत में जीना, लाइवलीहुड, इसमें गड़बड़ें शुरू हो जाती हैं। आज देखिए, वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्ट टेम्पर, ऊंची बिल्डिंग है पर हौसले बड़े छोटे। पहले छोटे घर थे, फैमिलियाँ बड़ी थी, नाउ वी हैव बिगर हाउसेस एंड शॉर्ट फैमिलीज। तो आज देखिए, आज के इंसान ज़्यादा खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा है या आज से 50 साल पहले का? पहले के खुश थे, उनकी ज़िंदगियों में खुशी थी। ये सब जिक्र इलाही से गफलत और गुनाहों से पैदा होते हैं, जैसा कि पानी से सब्ज़ा उगता है और आग से जलाना, और इसके असदात यानी ऑपोजिट यानी नेकी की तौफीक, असाबत राय कहते हैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, यानी आपकी राय बड़ी मजबूत है, हक का वाज़े होना, रब की मोहब्बत, दुआ की कबूलियत, दिल की नरमी, रिस्क और उम्र में बरकत, नेक व सालेह लोगों की हमनशीनी, दिल का मसरूर होना, कुशादगी मईशत, ये सब के सब इताअत और नेकी के पैदावार हैं। गुनाहगारों के गुनाहों की वजह से ज़मीन में जलजले, आसमान में जुल्मत यानी अंधेरे, बहरोबर में फसाद पैदा होता है, बरकत मिट जाती है, नेकियां कम होती हैं, जिंदगी अचीरन हो जाती है, पस आज अपने नफ्स को खरीद लीजिए। भाव ताव जारी है, कीमत सस्ती है, सामान मौजूद है, और एक ऐसा भी दिन आने वाला है कि इसमें कोई कीमत मिलने वाली नहीं। कैसे? ज़ालिक यौमुत तगाबुन, सूरह तगाबुन में आता है, ये तो गबन का दिन है। और गबन क्या होता है उर्दू में आप जानते हैं? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाना। क़यामत का दिन इसलिए भी तगाबुन है कि वहाँ जो एक दूसरे से उम्मीदें लगी होंगी वो उस पर बुरे नहीं उतरेंगे। औलाद और माँ बाप के बीच में तगाबुन, शोहर और बीवी के बीच में तगाबुन, और इसी तरह सूरह फुरकान, यौम यऊद्दु ज़ालिमु अला यदैही, जिस दिन ज़ालिम अपने हाथ काट रहा होगा। और एक अरबी का शेर है जिसका मफहूम क्या है, तू नादिमो पशेमान होगा, क्यों मैं इन लोगों की तरह तोशा नहीं लाया और इस दिन के लिए तैयारी क्यों नहीं की। जिंदगी का कोई दिन याद कीजिए जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को डिग्रियां मिली और आप पीछे खड़े सिर्फ चंद नंबरों की कमी की वजह से कुछ भी ना लेकर आए, पास ही हो गए तो बड़ी बात, उस दिन क्या दिल करता है। वो गफलत याद आती है जो 10 मिनट ज़ाया किए थे, ना किए होते उसमें कुछ पड़ती तो वही सवाल आया था हिसाब में। सो गई थी, शादी में चली गई थी, ना किया होता तो वो सारे सवाल हो जाने थे जो मैंने छोड़े हुए थे। ऐसे ही है ना। और दुनिया में देखिए कितनी भी नदामत हो फिर सेकंड चांस मौजूद है, दोबारा दे लें पेपर, 1 साल ज़ाया करके फिर फर्स्ट क्लास में आ जाएं। लेकिन वहाँ क्या होगा, नो यू टर्न। गुनाह रिस्क और कसब की राह में भी रुकावट है। इंसान गुनाह की वजह से मिलने वाले रिस्क से महरूम हो जाता है। अब कितनी लिस्ट बनी है बताएंगे, गुनाहों के नतायज कितने हमने पढ़े, 15, और नेकियों के नतायज सारे के सारे उसके ऑपोजिट। जो गुनाह का नतीजा है ना उसका ऑपोजिट नेकी का नतीजा। करना क्या है, अपने आप को पहचाने। पहली बात देखिए, आप मेरे साथ चलें ज़हनी तौर पे। कितनों को अभी तक गुनाह से वो खौफ महसूस होना शुरू हो गया जो बिजली के करंट से होता है, उबलते पानी से होता है, सांप से होता है, बिच्छू से होता है, बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। क्योंकि जब तक आपको मुझे अपने गुनाह से डर नहीं लगेगा, मैं क्यों बचने की कोशिश करूं? क्योंकि आगे हम पढ़ने लगे हैं गुनाहों की जड़, होता क्यों है गुनाह, इसकी रूट में क्या है। तो वही पढ़े जिसको गुनाह से डर है, जिसने गुनाह छोड़ना है। और अगर गुनाह छोड़ना ही नहीं, रिलैक्स्ड है, एज इट इज़ इट्स ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इट्स ओके, तो फिर तो मेरा नहीं हाल अगला चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। तो ज़रा दिल में गुनाह का खौफ रखते हुए पढ़िए, क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त ऐसे लग रहा है मुझे खुद से कि मैंने गुनाह से जान छुड़ानी है। जैसे कैंसर, कैंसर की जड़ें होती है ना, डॉक्टर को पता होता है किस दुआ से क्या फ़ायदा होगा। आप जब बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एक्सरे कराते हैं, आप बड़ी बड़ी मशीनों में से गुजरते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि बीमारी कहाँ है, वजह क्या है, फिर उसको अल्लाह के हुक्म से ऑपरेट करवा लेंगे। अब आप इस वक्त गुनाह का एक निक नेम रख लें, कैंसर। अल्लाह ना करे आपको किसी को हो, मुझे भी ना हो, लेकिन अगर कोई मुझे कह दे, मेरे कान जी आवाज़ कभी सुने कि आपको कैंसर है, तो मेरा दिल कैसे डूबेगा। सबसे पहले पूछूंगी कहाँ का, फिर सोचूंगी कि अब इसका इलाज। अब आप सोचिए कि गुनाहों के कैंसर की मोस्टली 3 रीजंस होती हैं। नंबर 1, तकब्बुर, किबर, बड़ा बनना। और ये किबर इबलीस को ले डूबा। क्या कहा था उसने, अना खैरो मिन हो, मैं आदम से अच्छा हूँ, आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया, मुझे तूने आग से पैदा किया, लिहाजा मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो ज़रा सा अपने आप को चेक करें, क्या मेरे अंदर सेल्फ प्रोजेक्शन का एहसास है। देखिए, फसजदू इल्ला इबलीस, सब ने सजदा किया। सोचिए ज़रा, मस्जिद में सब इमाम के साथ सजदे में चले गए, इल्ला इबलीस एक बंदा खड़ा रहा, प्रोमिनेंट हो गया ना, इमेजिनेशन मिला है। इस मस्जिद के हॉल में जाकर सबको देखे सजदा करे और एक बंदा खड़ा है, क्यों? प्रोमिनेंट होने का शौक था। अगर मैं सोचती हूँ हम खवातीन ये शौक कम कर देना तो हमारा वक्त, पैसा और कितने गम तफक्कुरात ख़त्म हो जाए। और आज के दौर का प्रॉब्लम क्या है, किसी की बात मुझे अच्छी लगी, लोग काफ़ी समझ की बातें करते हैं, कहने लगी पहले जेवरात पे पैसा लगता था, शादी होती थी सबसे कीमती चीज़ जेवर होता था, गोल्ड की सूरत में माँ बाप भी देते थे, लड़के वाले भी लाते थे कि चलिए काम आएगा, और वाकई जेवर काम ही आता था, या तो ज़कात देते होंगे या फिर आगे किसी मौके पर बिकता था तो उससे कोई बड़ी चीज़ ले ली जाती थी। कहने लगी कि अब शादियों पर जेवर से ज़्यादा कपड़ों पर पैसा लगता है, आज की बच्चियां जेवर नहीं पहनती, मैं ऐसी माँ को जानती हूँ जिसकी बेटी ने शायद एक रिंग भी इस गोल्ड की नहीं ली, कहती थी देना है तो डायमंड दे दे, गोल्ड नहीं पहनना। लेकिन ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद है, एक एक जोड़ा भी एक एक लाख दो दो लाख का। तो पहले 1 लाख का अगर जेवर लेते थे तो चले ना भी ज़्यादा हुआ, वक्त के साथ उतना तो रहता ही था ना, सोने की कीमत वक्त के साथ बढ़ती है। अब वो जोड़े किधर गए, अलमारियों की जीनत, कितनी दफ़ा पहने, अव्वल तो पूरे ही नहीं आने 4-6 महीने के बाद, फैशन बदल जाना, और लोगों ने कहना आपने एक ही जोड़ा पहना हुआ है, और कोई होगा जो कि आपको कि आप कितनी बेवकूफ़ हैं कि आप 1 लाख का जोड़ा पहन कर, एक दफ़ा पहनना था तो अच्छा था इसको कहीं से आप किराए पे ले लेती, नहीं समझे। टू बी प्रोमिनेंट, पहनिए अपने लिए, वो पहनिए जो बार बार पहनना है। अगर आपको बहुत महंगे जोड़े पहनने का शौक है, किसी का जाके पहन ले, लेकिन खुद पैसा लगा के बनाएंगे तो फिर उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। नया है तो उसकी कोई कीमत है, एक दफ़ा जिस्म पे ले लें कोई कीमत नहीं है। तो तकब्बुर बहुत बड़ा गुना है, और वो गुना जिसको हम गुना समझते भी नहीं। फिर दूसरी चीज़ देखिए, हिर्स और लालच। हिर्स ही ने आदम को जन्नत से निकाला। हिर्स क्या होती है और मिल जाए, हल में मजीद। इसमें भी देख लीजिए, हम खवातीन हैं, कितने जोड़े पहले से मौजूद हैं, अब अगली शादी में क्या वही पहने, या फिर गए और हर दफ़ा एक दो चार लेकर आ गए, चक्कर लगाया, ले आए, कभी उधर से गए कभी गए, और पिछले देने को दिल नहीं करता, पहने जो कोई नहीं तो दे कौन, इतना तो जिहाद किया था उनको बनाने में, और इतनी भारी शिपिंग लगाकर इधर लाए थे, कितना मुश्किल काम है आपको अंदाज़ा। हमसे पूछें जब स्कूल की हम चीज़ें मंगवाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, यानी जितने की चीज़ पाकिस्तान में आती है शायद उससे 3-4 गुना ज़्यादा शिपिंग का खर्चा आता है, स्पेशली नॉर्वे, कितना मुश्किल है। एक किताबों का सेट जो आप तक पहुँचता है शायद 10 हाथ लगते हैं और फिर वो आपके पास पहुँचता है। अब इन चीज़ों की हिर्स ने हमें मार दिया। किसी एक जगह किसी का रिश्ता हुआ, शादी भी हो गई, रुख्सती का नौबत थी, टूट गया मामला, तो जो उनके घर वालों से जो बात उनखाए हैं, हमने तो शादी के जोड़े का इधर ऑर्डर दिया है, 25,000 करोन का जोड़ा अपनी बेटी के लिए उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, ये उनकी रवायत है, मुझे क्या लगे इससे। तो मैं हिसाब जोड़ रही थी माइंड में कि 25,000 करोन पाकिस्तान के कितने होते हैं, तो मुझे लगा ये 3 से 4 लाख रुपए का जोड़ा था। तो अब वो पड़ा हुआ है क्योंकि शादी टूट गई। तो क्या अब अगर उस बच्ची की अब साल बाद होनी है तो वो जोड़ा फैशन में होगा? याद रखिए, आज हम अपने असल मकसद से खोए हुए हैं। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। हिर्स ने आदम को जन्नत से निकाला था। क्या थी हिर्स? लंबी उम्र, जियोगे। फिर तीसरा जुर्म, हसद। इसी ने आदम के एक बेटे को दूसरे के कत्ल पर आमादा किया। आज हसद कहाँ होता है? जब एक ही घर में सेठ साहब अपनी बेटी की शादी पे लाखों रुपया खर्च करते हैं, बल्कि करोड़ों, और उसी घर के बैक क्वार्टर में रहने वाला ड्राइवर सिर्फ इसलिए बेटी की शादी नहीं कर पा रहा कि जहेज नहीं है, और जब उसी ड्राइवर को भेजना है ना सेठ साहब ने, जाओ लाइटिंग वाले को ले आओ और जो उसका बिल दे आओ, एक दिन उसने सेठ साहब के हो सकता है पेट में छुरा घोंप देना। इससे हसद आता है, जितना बदतर होगा ना, दिखावा होगा, हसद होगा। अच्छा, आप बड़े शौक से पहन उड़ के जाते हैं शादियों ब्याहों दावतों मंगनियों में, आपको लगता है आपकी बाकी जो सिस्टर्स दोस्त हैं फैमिली वहाँ बैठी होती है, वो आपको देख के खुश हो रही होती है। खुश वो होते हैं जिनको होना नहीं चाहिए, वो तकाबल नहीं कर सकते आपसे, खुद इतनी मेहनत करके पहन के वो कहेंगी ये तो आज फिर नंबर ले गई, और वो उस जोड़े में आपको नहीं देख रही होती, वो अपने आप को देखती हैं, अगर मैंने पहनना होता तो कैसी लगती। हसद पैदा होता है। आप सजा संवार के 10-25 लाख रुपया लगाकर एक दुल्हन को स्टेज पे बिठा देते हैं तो क्या हर नज़र कोई प्यार की या दुआ की नज़र होती है? हसद लगता है, इसीलिए घर टूटते हैं। इसी तरह क्या कुछ होता है। तो आज के दौर के ख़ास तौर पे गुनाहों को सामने रखें तो ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं, दोहरा लीजिए, तकब्बुर, हिर्स और लालच, और हसद। जो शख्स इन 3 चीज़ों से खुद को बचाएगा वो शर से बच जाएगा, कुफर तकब्बुर से, मासी हिर्स से, और जुल्म बगावत तो सरकशी हसद से पैदा होती है। एक जमात ने हज़रत उमर की खिदमत में ख़त लिखा और इसमें ये पूछा कि इन 2 में से कौन अफसल है। एक तो वो है जिसके दिल में ख्वाहिश आते हैं उस पैदा ही नहीं होती और ख्याल तक नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तबीयतन सादा होते हैं, मुनकसिरिल मिजाज होते हैं, कहते एक वो है जिसके अंदर कोई अरमान ही नहीं, दूसरा वो जिसका नफ्स इसको ख्वाहिशात की तरफ उभारता है, वो महज अल्लाह ताला के लिए इनको छोड़ता है और नफ्स का मुकाबला करता है। तो हज़रत उमर ने जवाब में लिखा, जो शख्स नफ्स का मुकाबला करके महज खौफ इलाही की वजह से ख्वाहिशात को छोड़ता है, वो इन लोगों में से है जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए परख लिया है और इनके लिए अजर अजीम है। इम्तहन अल्लाह قلوبهم کے لفظ آتے ہیں سورہ حجرات میں، کہ اللہ جن کے دلوں کو چنا لے وہی بات ہے. تو کیا سیکھا ہے اس چھوٹے سے ٹاپک سے؟ کیا دور کرنا ہے؟ دل سے تکبر نکالنا ہے. اور تکبر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنے، بتر الحق کی وغمت الناس، جو پہنے تحدیث نعمت کے لیے پہنے، اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے پہنے، صدقہ جاریہ کی نیت سے پہنے، کسی کو ثواب ہو جائے اس نیت سے پہن لیں، اور لوگ میرے پہ ترس نہ کھائیں اس لیے پہنے، اور دین میں پہننا اوڑھنا جائز ہے یہ فیلنگ دینے کے لیے پہن لیں. اگر آپ نے یہ کہا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت جو دکھاوے اور نمائش کے لیے کچھ پہنے، قیامت کے دن اس کو خارش ہوگی، خارش کا عذاب ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ دل میں جذبہ کیا تھا کہ لوگ دیکھیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو خارش اب کوئی کر رہا، اللہ نہ کرے یہاں کوئی بیٹھ کے بہت ہی زیادہ خارش کرے تو سارے اس کو دیکھیں گے، شوق پورا ہو گیا. یقین کریں یہ خارش ہوتی ہے اندر سے کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے. دیکھیے دو باتیں، ایک یہ بہت خیال رکھنا کہ لوگ میری تعریف کریں، اور ایک دوسرا ایج ہے بالکل نہ کریں. یہ دونوں ریاکاری ہے، کرتا ہے تو کرے، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے. پرانا سمجھنا سمجھ لے، نیا سمجھتا سمجھ لے میری بلا سے. آپ اپنے دماغ سے یہ تصور ہی مٹا دیں کہ کوئی آپ کے کپڑے دیکھ رہا ہے، پھر آپ وہ پہنیں گے جو آپ کا دل کرے گا، جو آپ کی ریلیکسیشن ہوگی، جو ہے وہ پہن لیے. نہیں پہنا، بعض دفعہ کچھ کپڑے لوگ کہتے ہیں یہ شادیوں کے لیے. بھائی کیوں شادیوں کے لیے؟ کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا یہ شادیوں کے لیے. تو اب آپ کہتے ہیں لے اب شادی والا جوڑا میں پہن کے تو میں فلاں جگہ، آپ کسی کے گھر چلی جاؤں، مثال ہے آپ کسی کے گھر جائیں ملنے، کیا کہتے ہیں آپ بسوک، آپ شادی والا جوڑا پہن کر جائیں، دیکھیے گھر میں جاتے ہی ان کے آپ کو لوگ کیا پوچھیں گے، کہاں سے آئیں آپ، شادی سے. آپ گھر میں جائیں اور آپ کے شوہر شام کو آئیں اور آپ نے شادی والا کپڑا جوڑا پہننا ہو، تو میاں کیا سوچیں گے، کیا خیال ہے بیگم اب کہیں جانا، یا کہیں سے آئی ہو اور کپڑے بدلنا بھول گئی ہو، ایسی ہے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹھپا نہیں ہونا چاہیے. میں تو ایک سمپل سا کرائیٹیرین دیتی ہوں آپ کو، ایک ایمان والا اپنے ہر کپڑے میں نماز پڑھ سکے، ہر کپڑے میں نیکی کرے، ہر کپڑا اللہ نے جو اس کو نعمت دیا اس کا شکرانہ ادا کرنے کے قابل ہو. واللہ ہی شادیوں کے لیے بنے ہوئے کپڑے تو ساتر ہی نہیں ہوتے، بازو ہے ہی نہیں، گلے پیچھے سے کھلے، آگے سے کھلے، فلاں کھلے. آج جا کر الماری میں سے اپنے ہر جوڑے کو دیکھیں، کیا میں اس میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ بس وہ جوڑا ٹھیک ہے، ادروائز پھر باقیوں میں کچھ نہ کچھ آلٹر کریں تاکہ اس کو اس قابل کرے، اور دو چار دفعہ شادیوں میں پہن لیں، اس کے بعد پھر گھر میں پہنیں. ورنہ تو وہ بت بن کے آپ کے الماریوں میں کھڑے اور آپ نے ان کو سلیپ پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھے میں ہینگ کرنا کیا ہے، آپ نے ان سب کو ہینگ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں قیامت کے دن وہ کتنی آپ کے خلاف گواہیاں دیں گے. جی
انسان اپنے اندر سے یہ کیسے ختم کرے، جو خاص کر کے ہم عورتوں کو کپڑوں کا شوق ہے.
دیکھیے کپڑوں کا شوق ختم کرنے والی چیز نہیں ہے،
لیکن وہ قدرتی، جب آپ ایک فرض کرے شادی پہ جانا ہے، وہ یہ قدرتی آپ کے اندر جب آپ کپڑے پہنتے ہیں اچھے، اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ میں کیسی، سب سے شاید میں اچھی لگ رہی ہوں، یہ آ جاتا اندر.
دیکھیے میں اس کا سمپل علاج ہے، یعنی آزمودہ نسخہ ہے، لوگوں کی جو اصل ہے نا اس پہ نظر رکھیں. مثال ہے کہ جتنا ہم پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں نا، پیپل پلیزر، پیپل کانشیس. مثال ہے کسی کی نظروں میں بڑی بنوں، وہ کیا ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے، پتہ نہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ خود کیسی ہے، تو میں اس کی نظروں میں بڑی بن بھی گئی تو کیا. وہ جیسے کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا، سارے ہی اندھے تھے، ایک شخص کی ایک آنکھ تھی، وہ کہتے ہیں ہمارا راجا. یہ بات بہت اچھی ہے، مجھے آپ کی سمجھ آ رہی ہے، اور یہ چیز الحمدللہ پورے شرح صدر سے کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ میں اس چیز کا پورا یقین رکھتی ہوں کہ میری کوئی تعریف کرے کسی بھی چیز کی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، الا یہ کسی سے مجھے پیار ہے. مثال ہے میرا کوئی رشتہ ہے، کسی سے میری دل کا تعلق ہے، اب میں ان کی خوشی کے لیے کوئی چیز پہنوں کہ چلے جی وہ ان کو اچھا لگے، مجھے خوشی ہوگی. غیر بندہ راہ جاتا کرے، مثلا میں آپ کو اپنی بہت ہی بیکار باتیں بتا سکتی ہوں. مثلا آپ دیکھیے کہ عموماً ہمارے کلچر کے لوگوں کو جو میں نے دیکھا ہے، ڈاکٹر پہ جانا ہو ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنیں گے. ایون کئی سسٹرز ہیں وہ کہتی ہیں ہم ہر جگہ پاکستانی کپڑے پہن سکتے ہیں، مطلب مسجد میں گئے پہن لیے، گھر میں ایک دوسرے کو گئے، لیکن جب ہم نے کہیں پبلکلی جانا ہوتا ہے، ڈاکٹرز اپائنمنٹ ہے، نوف کے آفس میں جانا ہے، تو پھر ہم پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا جو بھی پہنتے ہیں. دوسری چیز میں نے لوگوں کو جو بہت ہی زیادہ ایک بہت ان کے دل میں ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایئرپورٹس ٹریولنگ کے دوران، گاڑی ٹرین بس میں جانا ہے اٹس اوکے، جہاز پہ جانا ہے نا تو وہ پھر کہتے ہیں جی جہاز میں جانا ہے، اونچی ہیل کی جوتی اور ہاتھ میں پرس میچنگ، کیونکہ بھائی لگے کئی بندہ ایئرپورٹ پہ سے آئے اور آگے بھی جانا. یقین کریں میں یہ سوچتی ہوں کہ اس گھر سے نکل کر اگلے کے گھر پہنچنے تک इधर जो मुझे छोड़ने जाएंगे वो मुझे जानते हैं, उनको पता है मैं कितने पानी में हूँ। रास्ते में 5-6 घंटे की ट्रैवलिंग होती है मोस्टली, इधर से उधर जाने में, इधर से लेकर वहाँ पहुँचने तक मुझे जितनों ने भी देखना है, क्या मैं उनको जानती हूँ? क्या वो मुझे जानते हैं? तो अगर मैं ऊंची जूती और हील और कपड़े और एटिशन मिशन बन के भी गई, और जिस गली से और जिस लाउंज से मैं गुजरी वो कहते हैं क्या लेडी है, मुझे कैसे पता लगेगा और मुझे क्या फ़ायदा होगा? और स्पेशली नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में आते जाते तो मैं कहती हूँ, जो अपने रब से नहीं इम्प्रेस वो मेरे से क्या, जो रब की नहीं तारीफ़ करता वो मुझसे क्या करे। अच्छा, रहेगी बात जहाँ पहुँचना है, तो अमूमन जहाँ पहुँचने में रात हुई होती है। अगर मैंने बहुत अच्छा सूट भी हील पहन ली तो मैं 7-8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद जब वहाँ पहुँचूँगी तो जो मेरी पाँव में दर्द होगा, और जो नए कपड़े पहनने से एक हल्की सी फीलिंग होती है तबीयत में इज़्तिराब, और मैचिंग पर्स से जो मेरे हाथ में टुपक टुपक पर्स होगा तो चोरी भी हो सकता है, मेरा पासपोर्ट जाएगा। कभी आपको इत्तफाक हो मेरी बात पे, अगर यकीन ना हो, आप मुझे कभी किसी से चुपके से पूछ लीजिए जो मुझे छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट्स पे। ये आपके जो यहाँ कीवी पे भी तो मिलते हैं, यूके में बहुत सारे ना ये प्लास्टिक के लिफाफे भी मिलते हैं ना ग्रोसरी स्टोरों के, मेरा हैंड पर्स जो मुझे वहाँ जाके यूज़ करना होता है वो, प्लस सफ़र में रास्ते की जो ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें मैंने ग्रोसरी बैग में डाली होती हैं। इतना खूबसूरत भी पर्स होगा तो वो ग्रोसरी बैग में डालना है, एक तो ये कि वो उनके स्कैनर में से गुजरेगा ख़राब हो जाएगा, मुझे ये बहुत होता है, चीज़ अच्छी है तो है और अच्छी ही दे दूँ, ख़राब ना करूँ, ज़ाया नहीं करती। दूसरा मुझे ये होता है कि अगर इसमें मेरा पासपोर्ट है, मेरी कोई कीमती चीज़ है, तो जब मेरा पर्स है छोटा होगा तो मैं कहीं रख के भूल सकती हूँ, बाथरूम में गई। दूसरी बात है, किसी की नज़र में आएगा, वो देखने में यकीन करें सब्जी का थल्ला लग रहा होता है जब वहाँ जाके आपको ज़रूरत पड़ती है। और मैं पुरानी जूती, 4th साल है यूके में जब गई थी तो वहाँ की ये जूती चल रही, बीच में 6 महीने ये घूमी रही, मैंने नई नई ली, मैंने कहा मिल जानी है मिल जानी है, और मिल गई, आज भी वही जूती पहनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कम्फर्टेबल है मेरे लिए, वो मेरे से खुश है मैं उससे खुश हूँ। जिस दिन वो जूती मुझे कहेगी ना मैं तुमसे खुश नहीं हूँ तो मैं बदलूँगी। आप मेरा सफ़र का बाया देख लें, पिछले 4 साल से मतलब मौसम के मुताबिक और चल रहा है, सफ़र का बाया मेरा सिंपल है, वही ऐसे यहाँ भी आप मुझे देखते ही आते हुए, अंदर कुछ भी पहना हो बाया, मैंने कभी बाहर ऐसे चमक दमक वाले कपड़े नहीं पहने, वजह कि मैं अपने आप को कंफर्टेबल रखती हूँ। लोग कहते हैं आप 10 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद भी फ्रेश दिखती हूँ, मैं इसलिए कि मैंने हील वाली जूती नहीं पहनी होती, मुझे कपड़े नहीं चुभ रहे होते, मैं नाइट सूट पहन के जाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जब मैंने उतरना है तो वहाँ जाकर मेरी क्या कैफियत होनी है, रिलैक्स सॉफ्ट प्योर कॉटन प्योर चीज़ पहनती हूँ कि पसीना भी ना आए, मुझे स्मेल से बहुत नफरत है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद से तो कभी आने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन मुझे सबसे बुरी चीज़ स्मेल लगती है जो किसी दूसरे से भी आती है। तो मैं समझ रही हूँ ये क्यों बता रही हूँ कि ये जो आपने अभी कहा ना कि बाहर वाले देखें, इससे मैं कब बेनियाज हुई, जब मैंने अल्लाह को देखा कि बंदों की मेरी नज़र में इतनी अहमियत नहीं जितनी मेरे रब की अहमियत है। चलिए पेज 30 के शुरू में अगला टॉपिक, गुनाहों के असरात। गुनाह की एक अलामत वो है जिसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं समझता हूँ कि वो शख्स गुनाह की वजह से इल्म भूल जाएगा। हाईलाइट करें, पता नहीं लफ्ज़ इल्म के साथ ही मेरे अंदर क्या होता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे लोगों को अपने बच्चे का नाम सुन के खुशी होती है ना, तो मुझे लफ्ज़ इल्म सुनकर खुशी होती है। तो इब्ने मसूद कहते हैं गुनाह की वजह से इल्म भूलता, और अगर आपने वो जो किताब मैंने पिछली दफ़ा भी रेफरेंस दिया था इमाम इब्ने कय्यम की है गुनाहों के असरात, उसमें पहला असर ये है कि इल्म से महरूमी। तो आज वाकई लगता है कि इल्म की मोहब्बत है लोगों में, लोगों को नहीं पता वजह क्या है, यानी ऐसे ही जैसे कोई बीमार हो लेकिन उसको वजह ना समझ आ रही हो, तो गुनाह की वजह से इल्म भूल जाता है। मुल्ला अली कारी तबकातुल हनफिया में जिल्द 2 सफ़ा 487 में फरमाते हैं, जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को किसी मसले के समझने में मुश्किलात पेश आती तो अपने शागिर्दों से फरमाते, लिखिए इसको हाईलाइट करें, यह सिर्फ मेरे किसी गुनाह की वजह से हुआ, और इस्तग़फार फरमाते हैं। कभी तो खड़े होकर नमाज पढ़ते तो मसला इन पर मुनकशिफ हो जाता, तो फरमाते मुझे उम्मीद है कि गुनाह मुआफ़ हो गया। इमाम आज़म के इस मामूल के मुतालिक जब फ़ुज़ैल बिन इयास को इल्म हुआ तो खूब रोए और फरमाया, ये जो भी कोटेशंस हैं ना इनको आप अपनी बुक में हाईलाइट करें, क्या कहते हैं, ये इनके गुनाहों की कमी की वजह से है, वरना इस पर हर कोई मुतनब्बिह नहीं होता। यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दिमाग की जो गिरहें अल्लाह ने खोली है ना, कहते हैं इसलिए कि ये गुनाहों से बहुत बचते हैं, आम लोगों को ये फ़हम क्यों नहीं मिलता, गुनाहों की वजह से। तो क्या समझ आया? आज मैं और आप ही सोचें, हमें कोई बात नहीं समझ आती तो सोचते हैं कि गुनाह की वजह से नहीं आती, फिर इसी तरह हाफिज़ इब्ने हजर ने तहजीबो तहजीब में जिल्द 11 पेज 129 में वकी बिन अल जर्राह अल कूफ़ी के हालात में लिखा, वो आइमे आलाम व हुफाज़ में थे, यानी बड़े इमामों में से एक थे, वो तबई बुज़ुर्ग और वली थे। अली बिन हिशम कहते हैं, मैंने वकी के हाथ में कभी भी कोई किताब नहीं देखी, हालांकि वो हदीस के बहुत बड़े हाफिज व इमाम थे, सारी हदीसें इन्हें याद थीं। मैंने इनसे कुव्वत हाफ़ज़ा की पुख्तगी और याद करने का तरीका दरियाफ्त किया तो फरमाने लगे, इसका तरीका इलाज फ़क्त तर्के गुनाह। याददाश्त की बेहतरी के लिए तर्के गुनाह से बढ़कर कोई दवा नहीं पाता, और फरमाया, कसावत कल्बी और अल्लाह से दूरी से बढ़कर कोई अजाब नहीं है। ये सबसे बड़ा अजाब है, अल्लाह की रहमत से सबसे ज़्यादा दूर कल्ब कासी है। कासी कौन है? जिसका दिल सख्त हो। कुरान में क्या पढ़ा, सुम्म कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा। तो कासी कहते सख्त दिल इंसान को, और दिल की सख्ती चार चीज़ों से होती है, इसको नोट करें। नंबर एक, बिला ज़रूरत लोगों से मेल मिलाप। आज इसको क्या कहते हैं, सोशलाइजिंग। फलां बड़ा सोशल है, बड़े टर्म्स हैं, बड़े लोगों को जानता है, और ऐसे वक्तों में जब फिर लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लोग कहते हैं इनको लाओ आगे। देखिए, लोगों से मिले जुलेंगे तो लोगों से काम निकालेंगे, अल्लाह से और अल्लाह के दीन से मिलेंगे तो आपको अल्लाह से काम मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर आप देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा सोना, ओवर स्लीपिंग, बेफ़ायदा गुफ्तगू, ओवर टॉकिंग, और कदरे किफ़ायत से ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग। चारों में लिख लीजिए ओवर का लफ्ज़ है। नंबर एक, ओवर सोशलाइजिंग, ओवर स्लीपिंग, ओवर टॉकिंग और ओवर ईटिंग। आज देखिए इसको एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, और इन चार चीज़ों को यहाँ आया ना, शैतान के टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, शैतान हमारे जिस्म के अंदर दाखिल इन चार इंतहाई रवैयों में होता है। आप देखिए, गुस्से में लोग सर फाड़ देते हैं, बहुत गुस्से में भी शैतान अंदर आता है। फिर इसी तरह एक और चीज़, ख्वाहिशात व शहवात से नफ्स को बचाना। ख्वाहिशात की पैरवी करके हलाकत में मुब्तला होने के मुकाबले में कई गुना सहल और आसान तर है, इसलिए कि इर्तकाबे शहवात और ख्वाहिशात से या तो तकलीफ़ व अकूबत में मुब्तला होना पड़ता है, या इससे ज़्यादा कामिल लज्जत से हाथ धोना पड़ता है, या इसकी नहुसत से ऐसा वक्त ज़ाया होगा जिस पर सख्त नदामत होगी, या इससे इज्जत में ख़राबी आएगी, या इसके सबबे माल का ज़ियां होगा, या ऐसी नेमत छिन जाएगी जिसका बाकी रहना ख्वाहिश नफ्स की तकमील से हज़ार गुना लजीज़ो शीरी होता है। कभी गुनाह की वजह से किसी कमीना कहते हैं कम आएगी, यानी बहुत थर्ड क्लास किस्म के इंसान को तेरे बारे में मुंह खोलने का मौका मिलेगा, यानी तुम पे कोई इल्ज़ाम लगा जाएगा, कोई गाली दे जाएगा। और कभी इसकी वजह से ऐसे गमूमो अहजान, यानी गम और हुजन के साथ दो चार होना पड़ता है जिसके सामने ख्वाहिश की तकमील की लज्जत हेच है। कभी ऐसे इल्म से हाथ धोना पड़ता है जिसके बाकी रहने की लज्जत ख्वाहिश की लज्जत से कई गुना शीरी है, और कभी गुनाह दुश्मन की खुशी और दोस्त की नाराज़गी का भी सबब बन जाता है, और इसकी नहुसत से मिलने वाली नेमत से महरूमी होती है, या इसकी वजह से दामन ऐसा दागदार हो जाता है जिसका धुलना मुमकिन नहीं होता। इसके बिलमुकाबिल नेक आमाल और अच्छी सिफात बेहतरीन अखलाक पैदा करने का बायस है, सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो आप देखिए कि इस टॉपिक में जो मुझे बात समझ आई है अपने लिए, वही आपके लिए शेयर कर देती हूँ। और वो क्या है कि इंसान जब भी कोई गलत काम करता है, उसका असर उसको दुनिया में भी नज़र आता है, आखिरत में तो जन्नत या जहन्नुम में एक लास्ट स्टेज है ना। तो आज अगर आप देखें कि हमारे जो किरदार है ना इस वक्त, या हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत जगह पे ये भी वजह इसकी कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों से बच नहीं पाते जिससे बचने की ज़रूरत होती है। अगली क्लास से पहले आप लोग इस सारे को पढ़ कर आएंगे, ठीक है, और रिकैप किया करें, क्योंकि अदरवाइज़ घर जाके किताब छोड़ देंगे ना तो फिर तो फ़ायदा नहीं होगा। चलिए फिर यहाँ पे रुकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तूब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।